Komm schon. Group Nummer 10. Brahman Jivan Arthat Sada Jivan Mukta Stiti Vale Sarva Bandhano Se Mukta. पहला बंधन है अपने देह भान का बंधन। ब्राह्मण जीवन में देह का बंधन, संबंध का बंधन, साधनों का बंधन सब खत्म हो गया ना, मोटा धागा खत्म हो गया, महीन धागा रह तो नहीं गया है, अभी संबंध है लेकिन बंधन नहीं। बंधन अपने वश में करता है और संबंध
मालिक है ना, हम संबंध में वॉलंटरीली जाते,
वॉलंटरीली जाते। बंधन अपने वश में करता है और संबंध स्नेह का सहयोग देता है, लेकिन शुद्ध संबंध, देह के संबंधियों का देह के नाते से संबंध नहीं लेकिन आत्मिक संबंध। तो बंधन में हो या संबंध में, अगर वश होते, परवश हो जाते तो बंधन है, और मुक्त रहते हो तो संबंध है। क्या कहा यहाँ पर, देह के संबंधियों का देह के नाते से संबंध नहीं लेकिन आत्मिक संबंध। देह के संबंधियों का देह के नाते से संबंध नहीं लेकिन आत्मिक संबंध। किसी ने अपने अनुभव में लिखा है कि बाबा है, बाबा के साथ उनकी युगल है, मम्मा है और मम्मा के साथ उनकी युगल, ये चार लोग खड़े हुए हैं। बाबा मम्मा को मम्मा कह रहे हैं, बाबा अपनी युगल को बच्ची कह रहे हैं, मम्मा की मम्मा मम्मा को मम्मा कह रही है, मम्मा बाबा की युगल को बच्ची कह रही है और मम्मा बाबा को बाबा कह रही है। जो जब तक कोई समझाए नहीं कौन क्या है, समझ में ना आए कौन किसका क्या है, और समझाने वाला भी कोई नहीं, कौन किससे पूछे, शायद किसने लिखा है, किसी दादी ने लिखा है अनुभव में। ऐसे चार लोग खड़े हैं और समझ में नहीं आ रहा है कौन किसका कौन है। संसार में तो महात्मा गांधी ने अपनी पत्नी को बा कहा, रामकृष्ण परमहंस ने अपने पति को माता कहा, यहाँ तक है, यहाँ उससे भी आगे है, यहाँ तो समझ में ही नहीं आ रहा है कौन क्या है। तो देह के संबंधियों का देह के नाते से संबंध नहीं लेकिन आत्मिक संबंध। तो बंधन में हो या संबंध में हो, अगर वश होते परवश होते हो तो बंधन है, और मुक्त रहते हो तो संबंध है। कैसे रहते हो, थोड़ा थोड़ा आकर्षित होते हो, ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त। चेक करो, कोई भी कर्म मुक्त होकर के करते हो, कोई भी कर्म हमें बांधे नहीं। कल कहा था ना, श्रेष्ठ कर्म अर्थात जो समान में किए जाए, याद में किए जाए, योग में किए जाए, त्रिकालदर्शी स्थिति में किए जाए, निस्वार्थ कर्म जो है, निष्काम कर्म जो है, मैपन से मुक्त स्थिति में किए हुए कर्म, निमित्त भाव से, निर्माण भाव से किए हुए कर्म ही महान कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है, और उन कर्म करते हुए आत्मा मुक्त रहती है। तो बाबा कहते चेक करो, कोई भी कर्म मुक्त होकर के करते हो, क्योंकि कर्म के बिना तो रह नहीं सकते। जब कर्मेंद्रियों का आधार है तो कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म बंधन नहीं, कर्म संबंध। जीवन मुक्त अवस्था अर्थात सफलता भी ज्यादा और कर्म का बोझ भी नहीं, हल्की अवस्था, निर्बोज। जो मुक्त है वह सदा ही सफलता मूर्त है। जीवन मुक्त आत्मा सदा फलक से कहेगी, क्या कहेगी, सफलता के लिए सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। जो बंधन में होगा वो सदा सोचता रहेगा, क्या सोचते रहेगा, बंधन वाले सफलता के बारे में,
होगी
होगी नहीं होगी कैसे होगी कब होगी इस जन्म में होगी या नहीं होगी पता नहीं शायद कुछ और जन्म लग जाए क्योंकि भारतीय संस्कृति में भविष्य की बहुत सारी योजनाएं बनाई है इसके लिए मनुष्य निश्चिंत रहता है संसार में भी पुनर्जन्म की जो योजना है उसमें आगे के लिए कई जन्म है इस जन्म में नहीं हुआ तो आगे जन्म में हो ही जाएगा और नहीं हो रहा है तो उसके कुछ कारण भी है अभी अगर पुरुषार्थ नहीं है तो एक हमारे पास एक कारण है कि पूर्व जन्म का बोझ है इस तरह से स्वयं को मुक्त कर लेते हैं अपने पुरुषार्थ से जो दुख होता है उससे स्वयं को मुक्त करते हैं भविष्य की योजनाएं जो शास्त्रों ने बना रखी है वो और समय जो है वो अनंत समय है शास्त्रों में बहुत है बाबा ने 5000 साल में सब समेट लिए शास्त्र में अनंत समय है तो एक संसार की रीति से भी ये देखा जा सकता है तो जो बंधन में होगा वो सदा सोचता रहेगा कि सफलता होगी या नहीं यह करे या नहीं करे ठीक होगा या नहीं होगा लेकिन ब्राह्मण आत्माओं की सफलता निश्चित है विजय निश्चित है तो क्या सुना ब्राह्मण जीवन अर्थात ही जीवन मुक्त जीवन अभी की जीवन मुक्ति संगम की जीवन मुक्ति सतयुग की जीवन मुक्ति नहीं सतयुग में तो जीवन मुक्त है ही अभी देह में रहते हुए मुक्त अवस्था किससे किससे मुक्त देहभान से मुक्त देह के बंधन देह के संबंध देह के रिश्ते देह के नाते देह के पदार्थ देह के मजहब देह के धर्म देह की इच्छाएं देह की वासनाएं देह की प्राप्तियां देह की आवश्यकताएं सब से मुक्त ऐसी एक अवस्था जीवन मुक्त स्थिति है तो देह का बंधन संबंध का बंधन आज बाबा ने मुरली में चार प्रकार के सम्मान गिनाए हैं एक सम्मान है बाप के लिए सम्मान उसमें बाबा से सर्व संबंध वो बाप है वो शिक्षक है वो सद्गुरु है वो साजन है वो बंधु सखा है तो सर्व संबंध एक से सोचू तो उसके लिए सोचू देखू तो उसको देखू सुनू तो उसको सुनू बोलू तो उसको बोलू उसके लिए बोलू उससे बोलू कर्म करूं तो उसके लिए करूं चलूं तो उसके साथ चलूं सुनूं तो केवल उससे सर्व संबंध एक से तो सर्व संबंध सब एक से जुड़ जाते हैं तो संसार के जो संबंध है वो थोड़े उसकी जो खींच है कम हो जाती है साधनों का बंधन जितनी ज्यादा साधन में आत्मा लिप्त रहती है तपस्या में वो बाधा है एक रीति से साधनों का उपयोग करना तपस्या के लिए वो अलग बात है पर जितने साधन बढ़ते जाते हैं चाहे उसका उपयोग करो या ना करो उन साधनों में जो घिरा हुआ व्यक्ति है उसकी तपस्या स्वतः ही कम हो जाती है साधनों के अभाव में की हुई तपस्या श्रेष्ठ होती है पर अगर साधन है तो उन पर निर्भर नहीं हो निर्भर नहीं होना है कोई भी साधन जो है वो हमारी तपस्या की वो अगर है तो ठीक अगर वो नहीं है तो भी ठीक तो भी हमारी तपस्या उससे रुके ना ये ऐसी हमारी स्थिति हो नहीं तो ऐसा ना हो कि ये नहीं है तो हम कर नहीं सकते किताब नहीं है तो कर नहीं सकते बाबा ने कहा है ना 7 दिन सुन लो और कहीं पर भी चले जाओ मुरली अगर रोज नहीं भी आती है तो बोला है ना कई बार मुरली
7 दिन का कोर्स
ही जीवन भर चलता है तो ब्राह्मण जीवन में देह के बंधन संबंध का बंधन साधनों का बंधन सब खत्म हो गया मोटा धागा भी नहीं तो महीन धागा भी नहीं न धागा न रस्सी न जंजीर न सलाखे कुछ नहीं सबसे मुक्त कोई बेड़िया नहीं बंधन अपने वश में करता है अपनी स्थिति को चेक करना है कि कोई भी बंधन हमें खींचे ना हमें बांध के ना रखे संबंध स्नेह का सहयोग देता है लेकिन शुद्ध संबंध हो आत्मिक संबंध, शुद्ध संबंध, देह के संबंधियों का देह के नाते से संबंध न लेकिन आत्मिक संबंध हो हमारा। तो बाबा फिर पूछ रहे, संबंध में हो, बंधन में हो, या थोड़ी थोड़ी आकर्षण होती है, ब्राह्मण अर्थात ही जीवन मुक्त, तो कोई भी कर्म मुक्त स्थिति में करो, कोई भी कर्म बांधे नहीं कि उसकी बार बार याद आती रहे, पश्चाताप होता रहे। कर्म के बिना तो कोई रह नहीं सकता। जब कर्म का आधार, कर्मेंद्रिया का आधार है तो कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म बंधन नहीं, कर्म संबंध। तो जीवन मुक्त अवस्था अर्थात सफलता ज्यादा, कर्म का बोझ भी नहीं। जो मुक्त है वह सदा ही सफलता मूर्त है। जीवन मुक्त आत्मा सदा फलक से कहेगी सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, और जो बंधन में होगी वो सोचती रहेगी सफलता होगी नहीं होगी, करे ना करे, ठीक होगा नहीं होगा। लेकिन जब बाबा ने कहा है सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, आज की मुरली में दूसरे नंबर का सम्मान है बाप की पढ़ाई, एक एक महावाक्य जो बाबा ने उच्चारण की है उसमें अटल निश्चय, एक एक महावाक्य में अटल निश्चय, ये है पढ़ाई में निश्चय। तो बाबा ने कहा है सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और हम कह रहे हैं पता नहीं होगा नहीं होगा, पता नहीं मैं कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा, हीन भावना है। तीसरे प्रकार का सम्मान है स्व को सम्मान देना, स्वयं को स्वयं मान देना। तो हीन भावना है अपने अंदर, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से होगा नहीं, पता नहीं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तीसरे प्रकार का सम्मान है स्व को सम्मान देना, अर्थात समान में स्थित रहना। यह करे या नहीं करे, ठीक होगा नहीं होगा, ये सब प्रश्न है, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं की सफलता निश्चित है, विजय निश्चित है। ऐसा नहीं समझना कि भविष्य में जीवन मुक्त होंगे, अभी जीवन मुक्त होना है। इस समय ही जीवन बंध और जीवन मुक्त का ज्ञान है। सतयुग में यह ज्ञान नहीं होगा। मजा है तो इस समय का, जीवन बंध का भी अनुभव किया और जीवन मुक्त का भी अनुभव कर रहे हो। सदा जीवन मुक्त रहने के लिए सहज साधन कौन सा है? सदा जीवन मुक्त रहे, न्यारापन और उपराम। उपराम तो ये स्थिति है, अंतिम स्थिति है उपराम, इट इज द रिजल्ट। सहज निमित्त भाव और सदा जीवन मुक्त, मतलब जीवन में है, देह में है, परंतु देह खींच नहीं रहा, देह के संबंध खींच नहीं रहे, साधन खींच नहीं रहे, ऐसी अवस्था। करण करावन हार करा रहा है। बाबा ने तो यहाँ कह दिया मैं और मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा, मैं को समान में बदल दो और मेरा को तेरा को, मेरा को तेरे में बदल दो, एक तो ये, या फिर जो मेरा है उसमें मेरा बाबा को लगा दो। ये विधि है किसकी, मतलब यहाँ समर्पण भाव भी दिख रहा है, जो जितना मनसा में समर्पित है वो उतना जीवन मुक्त है, क्योंकि मेरे मेरे का ही बंधन है, मेरा बाबा हो गया तो सब मेरा खत्म। एक वही संसार है तो बाकी जो भी मेरे मेरे है छोटे छोटे वो खत्म। जब एक मेरा में सब मेरा मेरा समाप्त हो गया तो बंधन मुक्त हो गए। तो यह सहज साधन आता है ना, कर्म के पहले चेक करो कि बंधन में फंस के तो कर्म नहीं कर रहे। दुनिया वाले तो बहुत कठिन तप करते हैं मुक्ति प्राप्त करने के लिए। दुनिया वाले मुक्ति के लिए क्या करते हैं? मोक्ष के लिए, मुमुक्षत्व कहा जाता है उसे, मोक्ष की कामना। बहुत सारे तप करते हैं, पूजा करते हैं, उपवास करते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, गुरुओं की शरण में जाते हैं, माला फेरते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं, बहुत कुछ करते हैं, परंतु उतनी तपस्या करने के बाद भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते।
एक साधवी थी, उसने 63 लाख पर मंथ पगार को छोड़ के
मुमुक्ष बड़े बड़े त्याग करते हैं लोग। जैन में ये बहुत होता है इस तरह। एक कहानी है ना, वो नारद वहां से गुजरते रहता है, देखता है एक साधु तपस्या कर रहा है, पर ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे पर क्रोध है। नारद आते ही वो आंख खोलता है, वो पूछता है नारद से कहां जा रहे हो, कहता है भगवान के पास। तो बोलते है कुछ पूछना है, बोलते हाँ मेरा एक प्रश्न है, मैं कितने सालों से तपस्या कर रहा हूं, मेरी मुक्ति कब होगी, पूछ के आना जरा, इतने सालों से मेरी तपस्या है, शायद उसे अपने पूर्व जन्म का भी ज्ञान हो गया, कई जन्मों से तपस्या कर रहा हूं, अभी तक कुछ उधर से संदेश आया नहीं है, ना कोई साक्षात्कार हुआ अब तक, अभी तुम जा ही रहे तो जरा पूछ के तो आना। और कहते कहते जैसे इतना क्रोध दिख रहा है, तो नारद कहता है ठीक है पूछ के आ जाऊंगा, अभी जा ही रहा हूं। थोड़ा सामने जाता है एक दूसरा सन्यासी, एक युवा सन्यासी, झूम रहा है, नाच रहा है, प्रभु के गुणगान कर रहा है, इतना मगन है ईश्वर की याद में, नाम गुणगान में, कि उसे भाई नहीं कि नारद भी वहां से गुजर रहा है। नारद उसे कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, तो बोलते मैं तो यादों में खोया हुआ हूं। अच्छा, वो कहता है कि मैं तो जा रहा हूं अभी भगवान के पास, तुम्हारे लिए भी कुछ पूछना है, तो बोलते मेरे लिए तो कुछ नहीं पूछना है, तो बोलते ठीक है फिर भी मैं पूछ के आ जाऊंगा, तुम्हारी मुक्ति कब होगी, ठीक है पूछना है तो पूछ लेना। तो नारद वापस आता है पहले से सन्यासी के पास, बोलता है पूछा क्या मेरी मुक्ति कब होगी, तो बोलता है और 3 जन्म लगेंगे, भगवान ने कहा। तो बोलते 3 जन्म, बहुत क्रोधित हो जाता है, सारे दिन भर मैं तपस्या करता हूं, कई जन्मों से तपस्या कर रहा हूं, उसके बाद में भी 3 जन्म, बहुत क्रोधित हो जाता है। नारद को भी कुछ कुछ बोलने लगता है, फिर नारद सामने जाता है और उससे मिलता है दूसरा जो सन्यासी होता है, दूसरा जो भक्त होता है, भक्त सन्यासी। तो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए भी पूछा, तो बोलता है क्या कहा भगवान ने, तो भगवान ने कहा कि वो जो सामने जो वृक्ष दिख रहा है उसमें जितने पत्ते हैं उतने जन्म लगेंगे तुम्हारी मुक्ति के लिए। तो वो झूमने लगता है, गाने लगता है, वाह वाह क्या बात है, इस संसार में अनंत वृक्ष है और अनंत पत्ते हैं, उन सब में से केवल इस एक वृक्ष में जितने पत्ते हैं बस उस उतने पत्ते उतने जन्म में मेरी मुक्ति होने वाली है। तो इतना झूमने लगता है, नाचने लगता है और उसी समय वह दृश्य हो जाता है, तुरंत मुक्ति। मुक्ति के लिए अनिवार्य शर्त है संपूर्ण समर्पण। संपूर्ण समर्पण अर्थात ना कोई शर्त, ना कोई शिकायत, ना कोई इच्छा, ना कोई इच्छा, ना कोई आकांक्षा।
इसलिए तो आप इस तरह बाबा ने बेचा।
मुमुक्षुत्व प्राप्त करने के लिए जब सर्व इच्छाएं समाप्त हो जाए, मुक्ति की भी इच्छा समाप्त हो जाए कि मुक्ति चाहिए मुझे, वो इच्छा भी समाप्त हो जाती है, इतना आत्मा परमात्मा में समा जाती है उसके प्रेम में। महाराष्ट्र का एक संत कवि है तुकाराम, वो लिखता है भक्ति वात्सुन मुक्तिची मद जड़ली रे व्याधि विठला मीच खरा अपराधी। वो लिखता है कि भक्ति करते करते मुझ में मुक्ति की इच्छा उत्पन्न हो गई है, तो ये जैसे विठला मीच खरा अपराधी, ये जैसे मैं अपराधी बन गया, ये क्या हो गया, तुझे छोड़कर भक्ति छोड़कर मुक्ति की इच्छा, ये भी जैसे कि आत्मग्लानि से भर गया है वो, मतलब जड़ ली रे व्याधि विठला मीत सकरा अपराधी। तो बाबा कहते हैं दुनिया वाले तो बहुत कठिन तप करते हैं मुक्ति प्राप्त करने के लिए, पर फिर भी मिलती नहीं है मुक्ति, कठिन है मार्ग को, और आपको सहज मिला, क्या कह दिया आपने, और जो मिल गया मेरा बाबा कहा, और इतना सहज भी नहीं चाहिए, ये चाहिए थोड़ा परेशान, पर ये मेरा बाबा कैसे कहना है, ऊपर ऊपर से नहीं,
लेकिन जन्म जन्म का जब से अवधि अव्यभिचारी भक्ति ब्रह्मा बाबा के साथ
दिया। मेरा बाबा कहा और बंधन खत्म, पर ये मेरा बाबा कैसे, ये मुख का सौदा है या दिल का सौदा है, मेरा बाबा के नारे लगाने से हो जाएगा क्या, दिल से प्राणों की गहराई से, हृदय से आर्तनाद निकले, इतनी गहराई से निकले कि वो आवाज इस ओम शांति भवन को चीरते हुए ऊपर सूक्ष्म वतन से पार अंतरिक्ष से होते हुए सीधा परम धाम और बाबा का सिंहासन डोलने लगे और देखे कौन है ये, ये ध्रुव भाई मुझे पुकार रहा है नीचे से, क्या कह रहा है, सीधा आपके सामने हाजिर हो जाएगा, बोलो बच्चे क्या चाहिए, ऐसी आर्तना दो इतने अंतरतम से प्राणों की गहराई से निकले वो आवाज, तब बंधन खत्म होंगे, नहीं तो नहीं, नहीं तो इधर मेरा बाबा भी कह रहे हैं माता है और रो भी रही है, दुखी भी है और मेरा बाबा, दोनों बैलेंस है, दोनों साथ साथ चल रहा है। जो सहज होता है उसको सदा अपनाया जाता है, जो मुश्किल होता है उसे सदा नहीं कर सकते, सदा नहीं कर सकते, इसके लिए पुरुषार्थ में ऐसे नियम नहीं बना दो कि जिससे खुद ही दुखी हो जाओ। सहज हो हमारा पुरुषार्थ, कि कोई एक घंटा दो घंटे का तो नहीं है, केवल अमृत वेला करना ही हमारा पुरुषार्थ नहीं है, दिन भर भी है, अमृत वेला कर लिया और दिन भर सोते रहे इसका क्या अर्थ है। सहज पुरुषार्थ, फ्लेक्सिबल लचीला पुरुषार्थ हमारा,
पुरुषार्थ तो दिन में ही शुरू होता है,
सच्चा पुरुषार्थ 9 बजे से लेकर तो 5 बजे तक, बस यही पुरुषार्थ है, उसके पहले 9 बजे से लेकर 5 बजे तक नहीं, दिन में, रात में नहीं, ड्यूटी आवर्स, उसके पहले तो सब ठीक है, उसके पहले तो माया का आने का क्या चांस है, अमृत वेला किया, मुरली किया, उसमें क्या है, ठीक है सब करते, शाम को 5 बजे के बाद योग कर रहे, तपस्या कर रहे, वो भी सब ठीक है, सच्ची माया तो आती है दिन में 9 बजे से, 8:30-9 बजे से चालू होती है 5 बजे तक, जो भी सारे संबंध संपर्क वाले, कांटे चुभाने वाले, निंदा ग्लानी अपमान सब उधर ही होता है, वहां पर ही परीक्षा है, उसमें जो अचल अडोल है वही सच्चा पुरुषार्थ है, उसमें जो योगी है वही योगी है, बाकी इधर उधर तो दोनों योगी है। तो जो मुश्किल होता है उसे सदा नहीं कर सकते, तो सदा सहज है या कभी कभी थोड़ा मुश्किल लगता है या सदा ही मुश्किल लगता है? तो यह याद रखना कि हम ब्राह्मण जीवन मुक्त आत्मा है, हम ब्राह्मण जीवन मुक्त आत्मा है, कोई बंधन हमें बांध नहीं सकता, हम बंध ही नहीं सकते, सदा बंधन मुक्त है, सहज योगी अर्थात सफलता मूर्त। अच्छा, तो क्या सुना, सफलता मूर्त बनने का साधन जीवन मुक्त स्थिति, ब्राह्मण जीवन अर्थात ही जीवन मुक्त स्थिति, कोई बंधन नहीं, ना साधनों का बंधन, ना संबंधों का बंधन और ना ही देह का बंधन, सब बंधन खत्म, छोटे मोटे जो भी है सारे बंधन खत्म, ब्राह्मण अर्थात ही जीवन मुक्त, कर्म मुक्त होकर करना है, कर्म संबंध नहीं, कर्म बंधन नहीं, कर्म संबंध, और इसमें क्या होगा, सफलता ज्यादा होगी और बोझ कम होगा, हल्की स्थिति रहेगी। तो सदा फलक से कहेंगे कि सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है और भविष्य के जीवन मुक्ति नहीं, यहाँ की जीवन मुक्ति, इस समय ही दोनों अनुभव है, सतयुग में यह ज्ञान नहीं होगा, मजा तो इस समय का है, जीवन बंध का भी अनुभव किया और जीवन मुक्ति का भी अनुभव कर रहे हैं, सदा जीवन मुक्त रहने के लिए सहज साधन है मैं और मेरा बाबा। तो मैं को समान से जोड़ना है, सारे दिन भर जो मैं आते रहता है मुख से, मैं, उसमें बीच बीच में देखना ये मैं कौन सा मैं है, समान वाला है या देहभान वाला है, पद पोजिशन वाला है, कौन सा मैं है ये, और मेरा संसार ही बाबा है, क्योंकि मेरे का ही बंधन है, मेरा बाबा हो गया तो सब मेरा खत्म, जब मेरा एक में सब मेरा समाप्त हो गया तो बंधन मुक्त हो गए, संसार में जितने मेरे हैं, मेरा ये, मेरा वो सब एक में समाप्त हो। तो यह सहज साधन आता है ना, कर्म के पहले चेक करो कि बंधन में फंस के तो कर्म नहीं कर रहे हो, दुनिया वाले तो बहुत कठिन तप करते हैं मुक्ति प्राप्त करने के लिए और आपको सहज साधन मिला हुआ है, मेरा बाबा कहा और जीवन और बंधन खत्म। हमारी ऐसी अवस्था हो मृत्यु के समय, कि कोई बोझ ना हो, कोई पश्चाताप ना हो। जैसे वो सूफी संत के लिए दिखाते हैं ना कि वो इतना सदा खुश रहने वाला एक तपस्वी था, एक फकीर था, और उसकी उसके कई लोग उसको मानते थे। सारा गांव और कई दूर दूर के गांव वाले उसके पास आते थे। क्यों मानते थे? उसको कभी किसी ने दुखी देखा ही नहीं, कभी उदास देखा ही नहीं, सदा हर्षित, सदा खुश। और इस वजह से और सबसे अनासक्त, इस वजह से उसकी और ही ज्यादा महिमा, उसके वजह से और ही उसके पास लोग आते थे। पर वो अंदर से विरक्त, अनासक्त, परंतु सदा खुश। अब जब उसकी मृत्यु आने वाली थी तो उसने अनाउंस किया कि 3 दिन के बाद मैं मरने वाला हूं। और ऐसा व्यक्ति अगर ये कह दे कि मैं मरने वाला हूं तो और ही जन समुदाय उमड़ पड़ता है दर्शनों के लिए, आने के लिए। तो कई लोग वो उनको समझाता था कि मेरी मृत्यु जब होगी तब रोना नहीं किसी ने। ये जब कहता था तो लोगों के आंखों में तो और ही आंसू आते थे। जितना लोगों को समझाता था उतना और उनको अंदर से लगता था, और उनका प्यार बढ़ता था। जब उसकी मृत्यु का समय आया, सारा का सारा गांव इकट्ठा हो गया और वो बैठा है, तो उसने कहा मरने से पहले, मैं जब मरूंगा तो मेरे कपड़ों सहित चिता पर मुझे लिटाना। क्योंकि वो जीवन भर हंसता रहा, कभी दुखी नहीं हुआ, तो उसने ये एक इच्छा प्रकट की कि मैं जब मरूंगा तो कपड़े सहित मुझे चिता पर लिटाना। तो मृत्यु हो गई, तो फिर तो सब लोग बहुत रोने लगे। भले उसने कहा था कि रोना नहीं, पर रोक थोड़ी पाते स्वयं को। इतना रो रहे, फिर चिता पे लिटाया और आग लगाई, फटाके फूटने लगे। उसने अपने अंदर में फटाके और फुलझड़ियां लगा के रखी थी, और जैसे फूटने लगी सब एकदम अचानक से हंसने लगे। क्योंकि उसने कहा था ना कि तो लोग कहने लगे, देखा दिन भर जन्म भर भी हंसाता रहा और मृत्यु के समय भी हंसा कर गया।
अपने मधुबन वाले भाई दिवाली को बहुत फटाके करते।
ये तो अलग प्रकार की है, मतलब उसका तो लक्ष्य था कि कोई रोए नहीं मेरी मृत्यु पर, क्योंकि आत्मा फिर तो वो खुशी खुशी से जिया और खुशी खुशी से मरते हुए गए संसार से। अच्छा, तो सहज योगी अर्थात सफलता मूर्त। अच्छा, ओम शांति।